ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಂಪರಾಮಯ ಉದ್ಭವಾನ್ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಲೇಖಕ ಔರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರ್ಮಜ್ಞಾನ
ಪಧಾರೆ. ಆಪನೆ ಹಮಕೋ ನಿವೇದನ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ವೆ
ನವ ಪ್ರಿಯಕ ಮಂಜರಿ ಕಲಿತ ಕರ್ಣ ಪೂರಶ್ರಿಯಂ ವಿನಿದ್ರತರ ಮಾಲತಿ ರಚಿತ ಶೇಖರೇಣೋಜ್ವಲಂ ದರೋಚ್ಛ್ವಸಿತ ಯೂಥಿಕಾ ಗ್ರಥಿತ ವಲ್ಗು ಬೈಕಕ್ಷಕಂ ವೃಜೇ ವಿಜಯನಂ ಭಜೇ ವಿಪಿನ ದೇಶ ತಕ್ಕೇಶವಂ. ಹೃದಯಸ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾ ಪ್ರವರ್ತಿತೋಹಂ ಬರಾಕರೂಪೋಪಿ ತಸ್ಯ ಹರೇ ಪದಕಮಲಂ. ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯದೇವಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನೋ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಪರಮಾದರಣೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಭಾ ಸಭಾಜತ್ ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋದಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣ, ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ಜಿನ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ಯಾಠ ಕರ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಹುತ್ ದಿನೋ ತಕ್ಕ ಪಡನೆ ಕಾನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯವಾಸಿ ಬನ್ಕರ್ಗೆ ಹೀ ಮೇರ ಸಮಪಸ್ಥಿತ ಗುರುಕಲ್ಪ ವಿದ್ವಜ್ಜನ್ ಏವಂ ವೈಷ್ಣವ ಮಂಡಲಿ ಸಭೀಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮೇರ ಕೋಟ್ ಕೋಟ್ ಬಂಧನ್. ಪೂರ್ವ ವಕ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೆ ಅಭಿ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯಾತ್ಮಕ ಏಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಹೈ ವೋ ವಿಷಯ ಯಹ ಹೈ ಜೈಸಾ ಮೇ ಸಮಜ್ ಪಾಯಾ ಹೂಂ ಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಿಸ್ ವಸ್ತು ಮೇ ಹೈ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ವರ್ಣ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರಯೋಜನೀಯ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ. यह प्रश्न चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह उठाया गया. महाप्रभु के एक परकर हैं श्री देवानंद ठाकुर, देवानंद पंडित. श्री देवानंद पंडित प्रारंभ में श्रीमद् भागवत के अध्यापक रहे हैं, परंतु श्रीमद् भागवत की व्याख्या किसी तरह से करते रहे, अपने प्रकार से करते रहे. महाप्रभु एक दिन उनकी व्याख्या सुनते हैं श्री गौरहरि और उनकी पोथी पन्ना छीनने के लिए दौड़ पड़ते हैं. वो तो किसी तरह से बचा लिया. जब श्री वक्रेश्वर पंडित की उन्होंने सेवा की, आज संत कृपा का यह परिणाम कि श्री देवानंद पंडित के हृदय में कृष्ण भक्ति उदय होती है और वे श्री महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि हम जो श्रीमद् भागवत के व्याख्याता हैं वो किस प्रयोजन तत्व को अपने हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की व्याख्या करें, श्रीमद् भागवत की व्याख्या कैसे करनी चाहिए. प्रभु कहे भागवत एमोन व्याख्यानिवा भक्त बिना आर किछु मुखे ना आनिवा. प्रभु का स्पष्ट रूप से आदेश है कि यदि श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने के लिए कोई वक्ता बैठता है और श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रीमद् भक्ति के बिना, हर भक्ति के बिना किसी दूसरे प्रकार से करता है, तो वह श्रीमद् भागवत का कभी भी मूल अर्थ कह ही नहीं सकता. श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने के लिए बैठे तो उसे एकमात्र भक्ति को ही अपने मुख पर लाना पड़ेगा. भक्ति के अतिरिक्त एक शब्द भी, अन्यत्र कुछ भी नहीं लाना है. श्रीमद् भागवत का प्रयोजन एकमात्र भक्ति में ही है. श्रीमद् भागवत के प्रतिज्ञा वाक्य में, प्रारंभिक वाक्य में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दी गई कि धर्म प्रोज्जित कही तो वो उत्तर परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शबदम तापत्रयोन्मूलितम्। श्रीमद् भागवत में प्रोज्जित कैतव धर्म का निरूपण है, जहां पर के छल में मोक्ष वांछा सबसे अधिक प्रधान है, भुक्ति मुक्ति की स्प्रहा एक पिशाची है, और यदि पिशाची कहीं भी छिपी हुई बैठी रही तो हम जो कुछ भी खाएंगे तो हम, परंतु वह उसका फल मिल जाएगा उस पिशाची को। किसी के ऊपर पिशाची चढ़ जाए और वह पिशाच, वो व्यक्ति यदि भोजन करने के लिए बैठे और 10 व्यक्ति जितना भोजन करें उतने भोजन को अकेला कर जाए, तो उस व्यक्ति ने थोड़ी खाया, वो तो वो पिशाची खा गए। इसी प्रकार भुक्ति और मुक्ति की स्प्रहा रखते हुए यदि कहीं भी भुक्ति और मुक्ति का अनुसंग है और श्रीमद् भागवत की व्याख्या की, तो जो कुछ भी फल है उस फल को वह पिशाची खा जाएगी, श्रीमद् भागवत का मुख्य फल प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत मोहिनी स्वरूप है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद निरूपण करते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है वो मोहिनी स्वरूप है। आदि मध्यावसानेशु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा ब्राता मृतानंदित सत्सुरम। इस श्लोक को यहां पर जरूर लेना पड़ेगा। जो मूल श्लोक है कैवल्य का प्रयोजन, हम इसके पहले वाला श्लोक है, और इसको छोड़े बिना इस कैवल्य का प्रयोजन हम की व्याख्या हो नहीं सकती। इसको दिए बिना हो ही नहीं सकती है इस श्लोक की व्याख्या। हरिलीला कथा ब्राता मृतानंदित सत्सुरम, जहां पर सत्सुरम कहा, सुर शब्द दिया, वहां पर एक संपूर्ण रूपक अपने आप हृदय में स्फुरित हो जाता है। हरिलीला कथा ब्राता मृत, अमृत और सत्सुर, इन दो शब्दों को लेकर के यह पूरा रूपक, मोहिनी स्वरूप का पूरा रूपक अपने आप स्फुरित हो जाता है। ग्रंथकार का यह तात्पर्य अपने आप उसके हृदय में स्फुरित हो रहा है, उसके वचनों से स्फुरित हो रहा है। किसानंद पयोधि मंथ जनितम सद्भक्ति गोष्ठ्याम कृपा मोहिन्या परिवेशितम रसमताम वृंदेन तत्राभित नाना रुच्यनुपान तक प्रतिमुहुर पीतम नित्यम सदा नोजीर्यत्यपि नोपजाति विकृतिम श्यामामृतम कंचन। बोले ये जो श्यामामृत है, ये श्यामामृत ऐसे प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, यह प्राप्त होगा कब? बोले कृपा मोहिन्या परिवेशितम, श्री संत कृपारूपी मोहिनी के द्वारा, भगवत कृपारूपी मोहिनी के द्वारा। भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामनी है, भगवत कृपा भक्त कृपा और भक्त कृपा की अनुगामनी है। अतः कृपा मोहिनी परिवेशितम, मोहिनी स्वरूप कौन है? यदि कृष्ण लीला प्रेम, कृष्ण प्रेम है अमृत, तो उस अमृत की का परिवेशन करने वाली मोहिनी है कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा सम्मुख नहीं है, इसलिए कृष्ण कृपा बड़ी विचारशील है, वो अधिकारी का विचार करती हैं, मुक्तिम ददाति करिष्यति स्मरण भक्ति योगम। परंतु भक्तों की कृपा ऐसी है जो कि विचार नहीं करती, अतः कृष्ण कृपा से भी बढ़कर के भक्त कृपा है। श्री महाप्रभु पात्रापात्र विचारणम न कुरते न स्व परम दीक्षते। श्रीमद् महाप्रभु की जो कृपा है वह कुछ कृपा कुछ अलौकिक है, जो कि पात्रापात्र का विचार भी नहीं करती, कृष्ण कृपा से भी बढ़कर के श्रीमद् महाप्रभु की कुछ कृपा। तो संत कृपा, महाप्रभु को मैं उस कोटि में नहीं रख रहा हूं, ये केवल एक महाप्रभु तो साक्षात श्री प्रभु स्वरूप है, प्रभु है, परंतु महाप्रभु को संत कहकर के अपराध नहीं कर रहा हूं, परंतु यहां पर केवल आवेश मात्र की बात कहते हुए कहूंगा कि संत कृपा अधिकार का विचार नहीं करती, जबकि कृष्ण कृपा अधिकार का विचार करती है। कृष्ण नाम अपराध का विचार करते हैं, श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, कृष्ण नाम अधिकार का विचार नहीं करते परंतु अपराध का विचार करते हैं। परंतु संत कृपा ऐसी है जो कि न अधिकार का विचार करती है न अपराध का विचार करती है। बिना अपराध और बिना अपराधी होने पर भी अपराधी को भी वह अपना लेती है। अतः ये जो कृपा है वो कृपा कोई अपूर्व है। कृपा मोहिन्या परिवेशितम हर लीला कथा ब्रात मृतानंदित तत्पुरम। श्री हरिलीला की कथा उसका जो समूह वही है अमृत। श्रीमद् भागवती कथा का वर्ण विषय है श्री हरिलीला। श्री कृष्ण ही है श्रीमद् भागवत के संबंध तत्व। श्री कृष्ण का ही श्रीमद् भागवती संहिता में सर्वत्र सर्वत्र वर्णन किया गया है। और इसका प्रयोजन तत्व क्या है? बोले प्रयोजन तत्व है कृष्ण लीला के गायन के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत का एकमात्र तात्पर्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही है। कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अतः मृतानंदित अमृतानंदित सत्सुरम संतगण रूपी सुरों को आनंदित करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह श्री हरि लीला ही है। उस श्री कृष्ण प्रेम को ही कृष्ण भक्ति को ही शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से मुक्ति के अर्थ में भी प्रस्तुत कर दिया। हमारे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने जिस समय किसी श्लोक का गायन करते हैं कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाद् बपुर्भिर् विद्धं नमस्ते जीवेति यो भक्तिपदे सदाय भाग। यहां पर पाठभेद कर दिया महाप्रभु ने टोका। बोले आपने मुक्ति पदे सदाय भाग की जगह है भक्ति पदे सदाय भाग क्यों कह दिया? मूल में तो मुक्ति पदे सदाय भाग है, आप भक्ति पदे सदाय भाग क्यों कह रहे हैं? वहां पर भक्ति का अर्थ भी तो मुक्ति ही है। भक्ति का अर्थ मुक्ति से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। पंचम स्कंद में मुक्ति शब्द को भक्तिवाची ही बताया गया है। यथावर्ण विधान नाम अपवर्गश्चाप भवती सा ही सर्वात्मनि अनुरक्ते अनिलयने भगवती वासुदेवे भक्ति योग लक्षणों सर्वेन्द्रिय ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा है महापुरुष पुरुष प्रसंग पंचम स्कंद का गद्य है। क्या अपवर्ग से आप भगवती साहे भक्त वो अपवर्ग भी होता है और वो क्या है? भक्ति योग लक्षण। तो जो मोक्ष शब्द है मुक्ति शब्द है वह मुक्ति शब्द भक्तिवासी ही है। श्रीमद् भागवती संहिता में जहां जहां भी मुक्ति शब्द आया है वहां पर उसका मुक्त प्रग्रह वृत्ति के द्वारा उसका अर्थ भक्ति ही है। क्योंकि भक्ति के द्वारा मुक्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। यथोपश्रय मानस्य और भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोपेति तदपि सांग सेवया। शीत भय और तम जैसे अपने आप दूर हो जाता है इसी प्रकार यदि भगवत भक्ति की जाएगी तो संसार की निवृत्ति तो आनुषंगिक रूप से अपने आप हो जाएगी। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो नामाभास मात्र का फल है मुक्ति की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत संहिता निरूपण करती है कि नामाभास मात्र से ही संसार बंधन की निवृत्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नाम का कृष्ण भक्ति का मुख्य फल मुक्ति है ही नहीं। श्री कृष्ण भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। प्रेम के अतिरिक्त वह अन्य कोई फल नहीं है। हरि नाम का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवती संहिता जहां पर अमृत शब्द का प्रयोग करती है वहां पर वह जहां पर मुक्ति शब्द का यहां पर स्वर्गीय अमृत को तुच्छ बना देता है। अमृत शब्द यहां पर मोक्ष रूप जो अमृत है उसको भी तुच्छ बना देता है। प्राकृत अमृत की बात को जाने दो। अमृत शब्द का जो मुख्य अर्थ है दो ही अर्थ मुख्य हैं, या तो स्वर्गीय अमृत या मोक्ष, यही अमृत के दो मुख्य अर्थ हैं। और वो दोनों ही अर्थ भक्ति के सामने अत्यंत अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य तात्पर्य है श्री हर भक्ति प्रेम भक्ति को प्रदान करना, वही है श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रयोजन। परंतु श्रीमद् भागवती संहिता मोहिनी है। मोहिनी भगवान का ये स्वभाव रहा कि जिस समय अमृत के कलसे को दैत्यों के हाथ में उन्होंने देखा उस अमृत के कलसे को लेकर के देवताओं देवताओं की ओर देख करके तो ये बात कही। देवताओं घबराओ मत,
मेरा अवतार तुम्हारे ऊपर अनुकूल ग्रहण करने के लिए, तुम्हारे अनुकूल बनने के लिए ही हुआ है, मैं अमृत तुमको ही दूंगा। ये इसी प्रकार शास्त्र श्रीमद् भागवत संहिता मोहिनी स्वरूप को धारण करके स्पष्ट रूप से कहती है, मैं तो आकुंचित पूर्वक कहती है, स्पष्ट रूप से नहीं, छिपा करके कहती है, मैं तो आकुंचित पूर्वक कहती है कि श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य भगवत भक्ति है। इस बात को देवताओं के सामने जो रसिक जन है, उन रसिक जनों के सामने उस पंचायती सभा में सुखदेव जी जहां वर्णन कर रहे हैं, वो उस सभा में ज्ञानी भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, रसिक जन भी बैठे हैं। अब यदि रसिकों की बात को अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी कहें तो भक्त रूपी वह पदार्थ ज्ञानियों के हाथ में पड़ करके कहीं विकृत न हो जाए, क्योंकि भक्ति रूपी स्प्रहा, मुक्ति रूपी स्प्रहा होकर के वह पिशाची उसके रस को पान कर जाए, जो रस मिलना चाहिए रसिकों को वह रस उस मुक्ति रूपी पिशाची को न मिल जाए, स्प्रहा रूपी मुक्ति की स्प्रहा रूपी पिशाची को न मिल जाए। इसलिए उससे बचाने के लिए श्रीमद् भागवती संहिता मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रथम श्लोक में नेत्र आकुंचन करते हुए श्रीमद् भागवत के मूल तत्व को व्यंजना वृत्ति के द्वारा या कहीं संकेत वृत्ति के द्वारा निरूपण कर देती है कि हरिलीला कथा ब्रात, ये तो है हरिलीला कथा का जो समूह वह तो है श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय, और अमृत अर्थात कृष्ण प्रेम वह है प्रयोजन पदार्थ। कृष्ण है इसके संबंध तत्व और कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम वह है अमृत। उस अमृत के द्वारा सत्वरम जो रसिक जन है उसको ही मैं आनंद प्रदान करूंगी, ये श्रीमद् भागवती संहिता का श्री मोहिनी स्वरूप श्रीमद् भागवती संहिता का मूल फल है। परंतु वहां पर दैत्य लोग भी बैठे हैं, मोहिनी जी की सभा में दैत्यगण भी विराजमान है, कहीं दैत्यगण यह ना समझ लें कि अरे ये तो गया हमारे हाथ से, इसलिए दैत्यों को वंचित करने के लिए मोहिनी भगवान दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं। उनसे तो केवल नेत्र आकुंचन करते हुए भंगिमा मात्र में कहा, परंतु दैत्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। ये जो बाद में बात कही गई के सर्व वेदांत सारम यह ब्रह्म में, यहां पर किसी भी तरह की वो ब्रह्म शब्द कह करके या किसी भी तरह की वकालत करने की जरूरत नहीं है। श्री शास्त्री महाराज ने अभी अभी, पूर्व वक्ता महोदय ने अभी अभी निरूपण किया था कि हम सबका समन्वय करके करते हुए चलेंगे, दोनों का खंडन करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म तत्व का यदि हम वह श्री कृष्ण की अंगकांति रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के अर्थ को ही ग्रहण करें, जगद्वैतम ब्रह्मोपनिषद सोच्य तनुभा, उस अंगकांति रूप अर्थ को ही ग्रहण करें तो ब्रह्म और उस ब्रह्म के साथ में जीव का जो एकत्व लक्षण जो अद्वितीय वस्तु है, उस अद्वितीय वस्तु जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता के एकता के द्वारा जो प्राप्त होने वाली वस्तु है, उस एकता के द्वारा प्राप्त होने वाले उस ज्ञान को ही यदि हम बस में अपनी जो 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 वस्तु रूप ब्रह्म और जीव की ऐक्य रूप जो ज्ञानियों का परम साध्य मोक्ष पदार्थ वह वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य का प्रयोजनम, उस कैवल्य को ही एकमात्र प्रयोजन माने। अद्वितीय जो वस्तु है, अद्वैत जो ज्ञान तत्व है, उस अद्वितीय वस्तु को यदि हम श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय माने और कैवल्य का प्रयोजनम मोक्ष को हम प्रयोजन माने, ज्ञानियों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय है अद्वितीय वस्तु और ब्रह्म, ज्ञानियों की दृष्टि में, केवल ज्ञानियों की दृष्टि में, और उनके लिए प्रयोजन क्या है, अद्वितीय वस्तु का श्रवण करके उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, यह है उनका प्रयोजन। भक्तों के लिए श्री कृष्ण लीला कथा ब्रात यह है वर्ण विषय, और अमृतम प्रे प्रेमामृत है उनके लिए प्रयोजन, जबकि ज्ञानियों के लिए अद्वैतम वस्तु द्वितीयम, जो अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म वस्तु, वह ब्रह्म वस्तु है ज्ञानियों के लिए एक प्रयोजन नहीं, एक वर्ण विषय और कैवल्य, केवल कैवल्य जो है वह मोक्ष है उनके लिए एक प्रयोजन। ये बात मोहिनी स्वरूप धारण करके श्रीमद् भागवत के रस तत्व से के जो अधिकारी नहीं है, ऐसे ज्ञानियों को विमोहित करने के लिए ये बात कह दी गई। मूलतः श्रीमद् भागवत का मूल तात्पर्य एकमात्र भगवत भक्ति नहीं है, मोहिनी स्वरूप को धारण करके श्री सुखदेव जी निरूपण कर रहे हैं। इसी तरह से श्री सुखदेव जी के द्वारा जो वस्तु के श्रीमद् भागवत के अंत में यदि इस प्रसंग के साथ में जोड़ दें, हम जो ब्रह्मोपदेश दिया है उस ब्रह्मोपदेश को भी देखें, तो वह ब्रह्मोपदेश भी एक तरह से वही शास्त्र की मोहिनी रूपता को ही व्यक्त करने वाला है। प्रारंभ में निरूपण कर रहे हैं कि प्राण वर्णित भीक्षणम भगवान हरिश्वरा, यह है श्रीमद् भागवत का मूल पदार्थ वर्ण विषय। और इसके बाद में जो कह रहे हैं कि घटे विन्ने यथाकाश आकाशस्यात यथा पुनः, बोले जैसे घट के टूट जाने पर आकाश आकाश हो जाता है, श्री विष्णा चतुर्थपाद यथा शब्द की टीका कर रहे हैं। यथा का तात्पर्य है यथा यथम, माने जीव का जो स्वरूप है उस स्वरूप की उसे प्राप्ति हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि घट के टूट जाने पर जो आकाश था वो महाकाश हो गया, घटाकाश और महाकाश जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। आकाश तो इतना विभू है कि उसको एक घट कभी भी परिच्छन्न नहीं कर सकता है, केवल अभ्यास मात्र हो गया है। आत्मा तो केवल अभ्यास मात्र है, देहाध्यास मात्र है, उस देहाध्यास मात्र की निवृत्ति मात्र है। जीव जो है, आत्मा जो है, वह आत्मा तो विभू है। तो घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यात यथा पुनः, यथा शब्द इसके यथा के यदि हम अर्थ लें तो यथा का जो योग्यता अर्थ है, यथा के चार अर्थ वेदांत में व्याकरण में निरूपण किए जाते हैं, योग्यता दीप्ता अनुवृत्ति और सादृश्य, ये जो चार अर्थ लिए जाते हैं इनमें यदि यथार्थ यथा का हम योग्यता अर्थ लें तो जीव की जो योग्यता है उस योग्यता को ही जीव प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से वहां पर कह रहे हैं कि आम ब्रह्म परम धाम, आगे ब्रह्म जहां पर श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव जी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, वहां पर भी ऐसा लगता है ये क्या कह गए, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य क्या जानने हैं। उस ब्रह्म उपदेश को देखकर के कभी भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्या उसका तात्पर्य क्या ज्ञान में है क्या, परंतु श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ज्ञान में नहीं है, श्रीमद् भागवत का तात्पर्य एकमात्र भक्ति में ही है। जैसे जहां पर यह कहा गया है कि आम ब्रह्म, गुरु जी का आदेश हो गया मैं यहां पर विश्राम करूंगा कि आम ब्रह्म परम धाम, आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम परम, आम ब्रह्म मैं ब्रह्म का अंश हूं, वो ब्रह्म क्या है परम धाम, परम श्री कृष्ण उनकी धाम अन्य कांति मात्र है। आम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म जो है वह कृष्ण की अन्य कांति मात्र है और मैं साक्षात रूप से उन ब्रह्म का ही अंश हूं, उनसे अलग नहीं हूं। अतः ब्रह्माहम ये जो कहना ये कोई ज्ञानियों की तरह से सोहम कहना नहीं है, ज्ञानियों की तरह से तत्वमसि ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं है, वह मूलतः श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का ही वर्णन करने वाला, कृष्ण की अंग कांति का ही वर्णन करने वाला वह उपदेश है, और श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन एकमात्र कृष्ण प्रेम में ही है। कैवल्य शब्द का जो भक्ति परक अर्थ किया गया वह अर्थ ही सर्वशास्त्र संवेद्य है, सर्वशास्त्र।
अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, आज रात हो गई अभी शास्त्री की आरती भी नहीं हुई है,
इधर विद्वानों का सुंदर सुंदर भाषण भी हम लोग सुन रहे हैं। मैं अब संचालक महोदय श्री वासुदेव कृष्ण ठीक है, ठीक होगा आपको दे रहा हूँ, आप बीच में घबरा के जब बात नहीं है आप इतना क्यों घबराते हैं, मैं क्या आप सुनिए तो इतना घबराते क्यों हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे सुनिए तो पहले। तो मैं समय कम है फिर भी अंत में हमारे पंडित जी आए, क्या नाम विद्वान आदमी हैं, समय का मूल्य भी जानते हैं किंतु फिर भी समय पर नहीं आए, सभी लोग भारतीय समय नहीं किंतु पंडित जो व्यक्ति होते हैं समय का मूल्य कदर जानता है। तभी मैं इनसे निवेदन करता हूँ खूब संक्षेप रूप में 5 मिनट में अपना व्यक्त समाप्त कर दे वहीं पर।
मे गई मे दुर्मम वरम वन भुव श्यामा समालद्रुमयी नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशितश्चलितयो प्रत्यद्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयो जयन्त यमुना कूले रहकेलयः श्रवसो कुबुलय श्रवसो कुबुलय वक्षणो रंजन उरसो महेन्द्र मणिदाम वृंदावन रमणीनाम मंडन मखिलम हरिर जयति। वंदनीय पूजनीय महामुनीन्द्राचार्य वर्तमान विराजमान अध्यक्ष महानुभाव एवं समुपस्थित विद्वद्गण एवं समुपस्थित माँ और बहन लोगों, बहुत आपका जो विषय है कैवल्यी का प्रयोजनम, इसको खंडन का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये शब्द भी छड़ा कि उसको नहीं अपनाना चाहिए, क्यों कि विचार करिएगा विद्वान लोगों, पहले क्या श्लोक है सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यी का प्रयोजनम हो गया, ध्यान दो सब विद्वान लोगों, फिर यही श्लोक है कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिश्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्रस्य रति क्वचित दूसरे श्लोक पे किसी का ध्यान नहीं दे दिया। विचार का ये विषय है इधर कि केवल क्या है, आचार्य लोगों ने पूर्ण कामस्य कैवल्या व्यासशाम पते है ईसतव्ययी किमस्मा भी ईसत विडम्बनम, इस पे कैवल्या व्यासशाम पते पे आचार्य लोग क्या कहते हैं जरा ने ध्यान से सुनना। केवल केवलस्य भावः कैवल्यम या गुणवचन ब्राह्मणादिव्य कर्मणि क्षय से क्षय प्रत्यय हो रहा है।